तृतीय अध्याय के पंचम श्लोक में भगवान मनु कहते हैं,
असपिंडा चया मातुर सगोत्रा चया पितु सा प्रशस्ता दुजातीनाम दार कर्मणि मैथुने।
इस श्लोक में भगवान मनु विवाह योग्य कन्या के बारे में वर्णन करते हुए कहते हैं, या मातुः अशपिंडा, जो स्त्री माता की छह पीढ़ी, च पितुः असगोत्रा और पिता के गोत्र की न हो, सा द्विजाति नाम, वही द्विजातियों के लिए दार कर्मणि प्रशस्ता, विवाह करने में उत्तम है। अर्थात जो कन्या माता की कुल की छह पीढ़ियों में न हो और पिता के गोत्र में न हो, उस कन्या से विवाह करना उचित है। अगले श्लोक में भगवान मनु कहते हैं कि विवाह के समय किन कुलों का हमें त्याग करना चाहिए, उसके बारे में भगवान मनु बताते हुए कहते हैं,
महान्यपि समद्धाने गोजा विधन धान्यतः स्त्री संबद्धे दशैतानि कुलानि परिवर्जयेत।
स्त्री संबद्धे एतानि दशकुलानि, विवाह में नीचे लिखे हुए दस कुल, गो अजा अवि धनिधान्यतः समृद्धानि महान्ति अपि, चाहे वे पशु धन धान्य सभी से पूर्ण क्यों न हो, कितने ही बड़े हों, परिवर्जयेत, उनको त्याग करना चाहिए, अर्थात कन्या के साथ उन कुलों में विवाह नहीं करना चाहिए। उन दसों कुलों के बारे में बताते हुए भगवान मनु कहते हैं,
हीनक्रियम निष्पुरुषम निश्छंदोरोमशार्षम छैया मया व्यवस्मारी विचित्र कोष्ठिकुलानि च।
अर्थात एक तो हीन क्रियम, जिस कुल में उत्तम क्रिया न हो, दूसरा निष्पुरुषम, जिस कुल में कोई उत्तम पुरुष न हो, तीसरा निश्छंदा, जिस कुल में कोई विद्वान न हो, चौथा रोमश अर्षम, जिसके कुल में शरीर के ऊपर बड़े बड़े रोम हों, पांचवे के बारे में बताते हैं कि जिस कुल में बवासीर छई अथवा राज यक्षमा योग हो, छठे कुल में राज यक्षमा रोग के बारे में बताते हैं आम यावी, जो सातवां कुल है जिस कुल में अग्नि मंदता के रोग हों, अर्थात आमाशय के रोग हों, आठवें कुल में अपस्मारी, जिस कुल में मृगी रोग हो, नौवें कुल में स्वित्री, अर्थात जिस कुल में श्वेत कुष्ठ हो, चक्कुली कुष्ठानि, और दसवें के बारे में बताते हैं जिसमें गलित कुष्ठ आदि रोग हों, उन कुलों में कन्या अथवा उन कुलों के पुरुष से विवाह कभी नहीं करना चाहिए। अर्थात जो कुल सत्क्रिया से हीन, सत्पुरुषों से रहित, वेदाध्ययन से विमुख, शरीर पर बड़े बड़े रोम अथवा बवासीर क्षयी दमा खांसी आमाशय मिर्गी श्वेत कुष्ठ गलित कुष्ठ आदि रोगों से युक्त हो, उन कुलों में कन्या या वर का विवाह नहीं करना चाहिए। इसलिए उत्तम कुल के लड़के को उत्तम कुल की लड़की के साथ ही विवाह करना चाहिए। आठवें श्लोक में भगवान मनु विवाह में त्याज्य कन्याओं के बारे में बताते हुए कहते हैं,
नो द्वहेत कपिला कन्याम नाधिकांगीम न रोगिणाम नालोमिकाम नातिलोमाम न वाटाचाम न पिंगलाम नरक्ष वृक्ष नदी नाम नीम नान्त्य पर्वतनामिकाम् न पक्ष्महि प्रेष्य नाम्नीम् न च भीषण नामिकाम्।
अर्थात कपिलाम पीले वर्ण वाली, अधिक अंगी अधिक अंग वाली जैसे छह उंगुली इत्यादि, रोगिणीम रोगीवती, अलोमिकाम जिसके शरीर पर कुछ भी लोम न हो, अतिलोमाम जिसके शरीर पर बड़े बड़े लोम हो, वाचाटाम अर्थात व्यर्थ में अधिक बोलने वाली, पिंगलाम जिसके पीले बिल्ली के समान नेत्र हो, वृक्ष रिक्ष नदी नाम नीम अर्थात नक्षत्र या नदी जैसे गंगा यमुना पर्वत विंध्याचल इत्यादि, पक्षी आहि प्रेष्य नाम नीम पक्षी अर्थात कोकिला हंसा इत्यादि, अहि अर्थात उरंगा भोगिनी इत्यादि, प्रेष्य इत्यादि दासी, और न कन्या का भीषण नामिकाम चंडिका कालिका इत्यादि नाम हो उससे विवाह नहीं करना चाहिए। अर्थात न पीले वर्ण वाली, न अधिकांगी अर्थात पुरुष से अधिक लंबी चौड़ी वाली बल वाली, न रोगयुक्ता न रोम रहित, न बहुत लोम वाली, न बकवाद करने वाली और न भूरे नेत्रों वाली, न रिक्ष न अश्वनी भरणी रोहिणी रेवतीबाई चित्तारी आदि नक्षत्र नाम वाली, तुलसिया गेंदा गुलाबा चंपा चमेली आदि वृक्ष नाम वाली, गंगा जमुना नदी नाम वाली, चांडाली आदि अंत्य नाम वाली, विंध्याचल हिमालया पार्वती आदि नाम वाली, कोकिला मैना आदि पक्षी नाम वाली, नागी भुजंगा आदि सर्प नाम वाली, माधो दासी मीरा दासी इत्यादि प्रेष्य नाम वाली, और भीमांकुरी चंडिका काली आदि भीषण नाम वाली कन्या के साथ विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये नाम कुत्सित तथा अन्य पदार्थों के भी हैं। नवमी श्लोक में ऐसा वर्णन करते हुए इसके अगले श्लोक में अर्थात दसवें श्लोक में भगवान विवाह योग कन्या के बारे में बताते हुए कहते हैं,
अव्यांगीम सौम्य नामनीम हंसवारणगामिनीम तनुलोमकेश दशनाम मृद्वहंगीम मुदद्वे स्त्रियम।
अर्थात अव्यंग अंगीम जिसके सरल सीधे अंग हो विरुद्ध नहीं, सौम्य नामनीम दूसरा जिसका नाम सुंदर अर्थात यशोदा सुखदा इत्यादि हो, हंसवारण गामिनीम हंस और हाथिनी के तुल्य जिसकी चाल हो, तनुलोम केश दशनाम सूक्ष्म लोम केश और दांतों से युक्त हो, मृदु अंगीम जिसके सब कोमल अंग हो जैसे स्त्रियम वैसी स्त्री के साथ हमें विवाह करना चाहिए। किंतु इसका संपूर्ण अर्थ कहते हुए भगवान मनु स्पष्ट करते हैं कि जिसके सुंदर अंग उत्तम नाम हंस हंसनी के सरस चाल वाली, जिसके सूक्ष्म केश और सूक्ष्म दांत हो, जिसके सब अंग कोमल हो, उस स्त्री से विवाह करना चाहिए। यहां पर भगवान मनु अगले श्लोक में कह रहे हैं कि भ्रात रहित कन्या से विवाह में क्या क्या सावधानियां होती हैं।
यदास्तु न भवेत भ्राता न विज्ञायेत वा पिता नोपयक्षेताम प्राज्ञः पुत्रिका धर्म शंक्रया।
अर्थात यस्वात् तु भ्राता न भवेत, जिस लड़की का कोई भाई न हो, वा पिता न विज्ञायेत जिसका पिता का ज्ञान न हो, ताम ऐसी कन्या से प्राज्ञः पुत्रिका धर्म संख्या बुद्धिमान मनुष्य
पुत्रिका धर्म, पुत्रिका उसको कहा जाता है जिसके ज्येष्ठ पुत्र को उसका नाना गोद ले ले, कि संख्या से न उपक्षेत, अर्थात विवाह न करे। बारहवें तेरहवें श्लोक में भगवान मनु सवर्ण कन्या के अतिरिक्त विवाह के विधानों के बारे में कहते हुए कहते हैं,
सवर्णाग्रे द्विजातीनां प्रशस्तादार कर्मणि कामतस्तु प्रवत्तानां इमाशुक्रशमो वरा शूद्रैव भार्यां शूद्रस्य सा चस्वाच विसहस्मृते ते चस्वाचैव राज्ञश्च ताश्चस्वाचाग्रजन्मनः।
अर्थात अग्रे प्रथम रूप में द्विजाति नाम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इन द्विजों को दार कर्मणि विवाह के लिए सवर्णा प्रशस्ता अपने वर्ण की स्त्री उत्तम है तू, लेकिन कामतः प्रवत्ता नाम काम भावनाओं के आधार पर या उसके वशीभूत होकर विवाह में प्रवृत्त होने वालों के लिए केवल मात्र सुंदर सा आकर्षण के प्रेम के कारण विवाह करना, इमाह क्रमशः वरस्यु, ये आगे कही स्त्रियां क्रमशः विवाह के लिए श्रेष्ठ हैं। अर्थात
शूद्रस्य भार्या शूद्रा एव,
शूद्र व्यक्ति की पत्नी केवल शूद्रा ही हो।
विषह सा च स्वाच स्मृते,
वैश्य की पत्नी शूद्र वर्ण की हो या अपने वर्ण की हो, दोनों वर्णों की हो सकती है। और
राज्ञः ते च स्वाच एव च,
क्षत्रिय की पत्नी उन दोनों वर्णों अर्थात शूद्र वैश्य और अपने क्षत्रिय वर्ण की हो सकती है। अग्रजन्मना ब्राह्मण की पत्नी
ताच स्वाच,
अर्थात वे शूद्रा वैश्या क्षत्रिय सभी वर्णों की स्त्रियां पत्नी बन सकती हैं, और अपने ब्राह्मण वर्ण की स्त्री भी। इस प्रकार ब्राह्मण चारों वर्णों में विवाह कर सकता है। अगले श्लोक में मनु इसी की निंदा करते हुए कि ब्राह्मण इत्यादि का शूद्र कन्या से विवाह करना और उसमें क्या हानियां हैं, क्यों निषेध है, इन सब का वर्णन आगे करते हुए कहते हैं,
न ब्रह्मण क्षत्रियोरापि अपबद्यति हितिष्ठितो कस्मिंश्चिदपि वृत्तान्ते शूद्राभार्योपदिश्यति।
आपदि अपि हितिष्ठतो, आपत्ति में पड़े हुए ब्राह्मण क्षत्रियो, ब्राह्मण और क्षत्रिय के लिए कस्मिंश्चित अभिवृत्तान्ते, किसी भी विधान या अवस्था में शूद्रा भार्या न उपदिश्यते, शूद्रा को पत्नी बनाने का विधान नहीं है।
हीन जाते स्त्रियं मोहात् उद्वहन्तो दुजातयः कुलान्नेव नतंस्यासु ससंतानि शूद्रताम्।
पंद्रहवें श्लोक में भगवान कहते हैं, द्विजातयः द्विज जात के लोग मोहात मोह या काम में फंसकर हीन जात स्त्रियम उद्वहन्तः, हीन जात की स्त्री के से विवाह करके ससंतान कुलान एव आशु शूद्रताम, अपने संतानों सहित कुल को शीघ्र ही शूद्रता को नयंती प्राप्त कराते हैं, अर्थात ऐसे परिवार शीघ्र ही शूद्र हो जाते हैं। सोलहवें श्लोक में भगवान कहते हैं,
शूद्रा वेदी पतस्त्रेरु तस्थ्यत नयश्य च शौनकस्य सुतोत्पत्या तदपत्या तया भृगोः।
अर्थात शूद्रा वेदी पतित, द्विज शूद्र पत्नी के सिवाह करके पतित हो जाता है। अत्रैह च उत्थन्यतस्यः, यह अत्रि ऋषि और उत्तत्थ ऋषि के पुत्र गौतम का मत है। अत्रैह च उत्तत्तनेनस्य सुतोत्पत्त्या शौनकस्य, जिसमें संतान उत्पन्न करने से पतित होता है वह शौनक ऋषि का मत है। तत् अपत्यो तया भृगु, पुत्र का पुत्र भी यदि शूद्रा से उत्पन्न होता है तब वह पतित होता है, ऐसा भृगु ऋषि कहते हैं। सत्रहवें श्लोक में भगवान कहते हैं,
शूद्रां शयनमारोप्य ब्राह्मणो यात्यधो गतिं जनयित्वा श्रुतं तस्यां ब्रह्मण्या देवहीयते।
शूद्रां शयनम आरोप्य, शूद्रा के साथ शयन करके अर्थात रमण करके ब्राह्मण अधोगतिम याति, ब्राह्मण पतित हो जाता है। तस्याम सुतम जनयित्वा, उसमें संतान उत्पन्न करने से तो ब्रह्मणात्येव हीनते, अर्थात अपने ब्रह्मणपने से ही गिर जाता है, अर्थात उसका ब्रह्मणत्व तो नष्ट हो जाता है। अठारहवें श्लोक में भगवान कहते हैं,
दैव पित्रातिथेयानि तत्प्रधानानि यस्य तु नाश्नन्ति पितृदेवास्तन् न च स्वर्गम् न गच्छति।
अर्थात यस्तु तु, जिस व्यक्ति के यहां दैव पितृ आतिथेयान, देव पितर और अतिथियों का यज्ञ इत्यादि कर्म नहीं होते, तत्प्रधानानि उस शूद्र स्त्री की प्रधानता में होते हैं, तत् पितृदेवा नाश्नन्ति, उनके भागों को पुत्र देव ग्रहण नहीं करते और सह स्वर्गम न गच्छति, उसे स्वर्ग प्राप्त नहीं होता। 19वें श्लोक में भगवान कहते हैं,
वृषलीफेन पीतस्य निःश्वासोपहतस्य च तस्यां चैव प्रसूतस्य निष्कृतिर्न विधीयते।
अर्थात वृषलीफनेन पीतस्य, जिसने शूद्र स्त्री के होठों का पान कर लिया है, च निःश्वासोपहतस्य और उसके मुख पर अपने सांसों को स्पर्श कराया है या उसकी सांसों से स्पर्श हुआ है, च तस्याम प्रसूतस्य और उस शूद्र स्त्री से जो उत्पन्न हुआ है उसको निष्कृति ही न विधीयते, कभी शुद्धि नहीं होती, वह पतित ही रहता है। इन श्लोकों में अर्थात 14 से 19 श्लोक तक 11वें श्लोक से और 19 श्लोक तक प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं, क्योंकि पहले शूद्रा कन्या या ब्राह्मण कन्या या वैश्य कन्या या क्षत्रिय कन्या के साथ विवाह का विधान बताकर ठीक उसी के बाद उसकी ये हानियां बताना, इस पर विद्वानों ने शंका करी है, क्योंकि इनको निम्न आधार पर विद्वानों ने प्रक्षिप्त सिद्ध किया है। पहला तो प्रसंग विरुद्ध, क्योंकि 6 से 9 श्लोक तक विवाह के अयोग्य कन्याओं को बताकर 10वें में योग्य कन्या के गुण लिखे
ग्यारहवें श्लोक में पुनः अयोग्य का कथन है। यहां नौवें श्लोक तक अयोग्य का प्रसंग समाप्त हो गया था। दसवें श्लोक में कन्या के गुणों का कथन है। बीसवें श्लोक में दसवें के साथ और ग्यारहवें के साथ नहीं है, अतः दसवें श्लोक का अपवाद माना जाए तो अर्थ होगा कि जिसके भाई न हो उस कन्या के साथ विवाह न करे, अर्थात वह कन्या अविवाहित ही रहे या अयोग्य वर ही उसे प्राप्त हो। यदि ऐसा किया जाता है तो कन्या के साथ अन्याय ही है, धर्मानुसार यह उचित व्यवस्था नहीं होगी। जिस कन्या का पिता अविज्ञात हो उसके ज्येष्ठ पुत्र को अविज्ञात नाना कैसे गोद ले लेगा। अतः पुत्रिका धर्म शंकया के प्रचलित अर्थ के साथ परस्पर विरोध है। यदि इस वचन का अर्थ या किया जाए कि उस कन्या की पुत्रिया ही होंगी तब भी विरुद्ध है, क्योंकि मनुवर्णित पुत्रोत्पत्तियों के कारणों की मान्यता से भी इसका मेल नहीं है। दूसरा कारण विद्वानों ने बताया है अंतर विरोध। ग्यारहवां श्लोक नवम अध्याय के 187वें श्लोक के विधान के विरुद्ध है। दूसरा 12 और 13 श्लोक में जो काम भावना से प्रेरित होने के उपरांत विवाह करने वालों के लिए कौन सा विवाह श्रेष्ठ या अश्रेष्ठ यह बताया गया है और वर्णानुसार उसका निश्चय किया गया है, ये दोनों ही बातें मनुस्मृति सम्मत सिद्ध नहीं होती। यहां विचारणीय बात यह है कि जब काम भावना में आसक्ति होकर विवाह किया जा रहा है तो उसमें किस वर्ण के साथ किस वर्ण की स्त्री का विवाह होना चाहिए इसका निश्चय करने का अवसर ही नहीं रहता, और न ही उसमें किसी वर्ण के साथ विवाह करने पर श्रेष्ठता और अन्य वर्ण के साथ विवाह करने होने पर अश्रेष्ठता की बात ही रह जाती है। इस बात को तीसरे अध्याय के 32वें श्लोक में मनु ने स्पष्ट किया है। इच्छया अन्योन्य संयोग कन्यायाश्च वरस्य च गांधर्वः शतु विज्ञेयो मैथुन्यः कामसंभवः। काम से प्रेरित होकर विवाह में तो एक दूसरे की इच्छा से संयोग होता है, वह किसी वर्ग वर्ण के पुरुष या स्त्री का किसी भी वर्ण की स्त्री या पुरुष के साथ हो सकता है, अतः इसी आधार पर व्यवस्था का निश्चय करना मनुस्मृति की मौलिक धारणा के अनुकूल नहीं है। दूसरी बात यह है कि मनु ने काम विवाह को चाहे वह किसी भी के साथ हो निंदित माना है। तीसरे अध्याय के 41वें श्लोक में ऐसा कहा गया है। इन श्लोकों में उच्च वर्ण के पुरुष द्वारा निम्न वर्ण की स्त्री के साथ विवाह करने के लिए श्रेष्ठ मानना उक्त मान्यता के विरुद्ध है। अतः है ये दोनों श्लोक परवर्ती काल के प्रक्षेप हैं। 12-13 श्लोकों में जो निम्न वर्ण की स्त्री के साथ विवाह होना श्रेष्ठ माना गया है और 14-19 श्लोकों में फिर शूद्रा स्त्री से ब्राह्मण क्षत्रिय द्वारा विवाह करना निंदित माना गया है, यह भी मान्यता मनु स्मृति के अन्य मान्यताओं के प्रतिकूल है। यद्यपि मनु ने प्राथमिक रूप में सवर्ण भार्य का ही विधान किया है किंतु सवर्णा से विवाह न करने अन्य वर्ण की स्त्री से विवाह करना मनु के मत से निंदनीय है ऐसी बात नहीं है, क्योंकि दूसरे अध्याय के 213वें श्लोक में 240वें श्लोक में 238वें श्लोक में 265वें श्लोक में बताया गया है स्त्री रत्नम दुष्कुलादपि स्त्रियो रत्नानि समादेयानि सर्वतः, अर्थात किसी भी वर्ण की ज्येष्ठ स्त्री से विवाह किया जा सकता है। किसी भी वर्ण की श्रेष्ठ स्त्री से विवाह किया जा सकता है। यह कहकर सभी वर्णों के स्त्रियों के साथ विवाह करने की छूट दी गई है। इस आधार पर यह भी कहा जा सकता है कि किसी भी वर्ण में विवाह करें वह विवाह अश्रेष्ठ या निंदनीय नहीं कहा जा सकता। इन श्लोकों में शूद्रा से विवाह करने को निंदनीय कहना, निम्न वर्ण की स्त्रियों से विवाह करने को उचित ठहराकर अपने से उच्च वर्ण के विवाह को अनुचित मानना उक्त मान्यताओं के विरुद्ध है। चौथवें मान्यता के बारे में विद्वान कहते हैं कि मनु की यह भी मान्यता है कि केवल वर्णानुसार विवाह को अश्रेष्ठ नहीं मानते, अपितु विधि में भी श्रेष्ठता अश्रेष्ठता मानते हैं। तीसरे अध्याय के 20वें श्लोक में उन्होंने विवाह विधियों को हितकारी और प्रेत्य चेह हितान हितान कहा है, और इसी संकेतानुसार अन्य श्लोकों में भी जैसे 39वें से 42वें श्लोक तक हितकारी विधि के अनुसार किए गए विवाहों के गुण और अहितकारी विधि के अनुसार किए गए विवाहों के दोष बताए गए हैं। तीसरे अध्याय के 20वें श्लोक में चतुर्णाम अपि वर्णनाम पद से विशेष ध्यान देने योग्य है, ये विधियां चारों वर्णों पर लागू हैं। इस मान्यता अनुसार 11 से 19वें श्लोक के विधान मनुविरुद्ध सिद्ध होते हैं। अगले श्लोकों में भगवान मनु 8 प्रकार के विवाहों के बारे में बताते हुए कहते हैं,
चतुर्वर्णाम अभिवर्णानाम प्रेत्यचेह हिता हितान अष्टाविमान सबासेन स्त्री विवाह निबोधयत।
चतुर्णाम अपि वर्णानाम चारों वर्णों में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र के प्रेत्य च इह हित अहितान परलोक में और इस लोक में हित करने वाले तथा अहित करने वाले इमान अष्टौ स्त्री विवाहान इन 8 प्रकार के स्त्रियों के साथ होने वाले विवाहों को समासेन संक्षेप में निबोधत जानो या सुनो। आठ विवाहों के बारे में जो मनु की मान्यता है इस विषय संकेतक श्लोक में भगवान मनु ने स्त्री पुरुषों के दाम्पत्य संबंध में 4 वर्णों के लिए विशेष प्रक्रिया और योग्यता अनुसार जिस व्यक्ति पर जो लागू हो 8 विवाह विधियों का उल्लेख किया है। यद्यपि वर्णों के लिए यहां उल्लेख है किंतु उनमें प्रथम 4 विवाहों को मनु ने 4 वर्णों के लिए हितकारी उत्तम धर्मानुकूल बताया है, शेष 4 को आशुर गंधर्व राक्षस पिशाच को निंदित बताया है और अहितकारी बताया है, अधर्मानुकूल मानते हुए उन्हें दुर्विवाह की संज्ञा दी है। निंदित विवाहों को अपनाने वाले व्यक्ति और उसकी प्रजा भी निंद होती है, अतः वे निषिद्ध हैं। इसी प्रकार आर्ष विवाह में प्रचलित गोयुगल देने की प्रथा को भी मनु ने अमान्य घोषित किया है, बिना कुछ दे लेकर आर्ष विवाह करना ही धर्मानुकूल है। 21वें श्लोक में भगवान मनु कहते हैं,
ब्राह्मो दैवस्तथैवार्षः प्राजापत्यस्तथा असुरः गांधर्वो राक्षसश्चैव पैशाचश्चाष्टमाधमः।
इसमें 8 प्रकार के विवाहों के बारे में कहते हुए ब्रह्मा दैव तथा एव आरसः प्राजापत्यः तथा आसुरः, अर्थात ब्राह्म्य दैवार्ष प्राजापत्य असुर गांधर्व राक्षस अधम पिशाच, ये विवाह आठ प्रकार के बताए हैं। अर्थात ब्राह्मण दैव आर्ष प्राजापत्य आसुर गांधर्व राक्षस पैशाच, इन विवाहों के नियमों के बारे में बताते हुए 22वें श्लोक में वर्णानुसार धर्म विवाह का विधान किया गया है।
यो यस्य धर्मो वर्णस्य गुणदोषौ च यस्य यौ यद्वः सर्वं प्रवक्ष्यामि प्रसवे च गुणागुणान्।
यस्य वर्णस्य यः धर्मः, जिस वर्ण का जो धर्मानुकूल विवाह है, च यस्य यौ गुणदोषौ, और जिसके जो गुण और दोष हैं, च प्रसवे गुण आगुणान, तथा उनके अनुसार पुत्रोत्पत्ति करने में जो गुण और दोष हैं, तत्सर्वम वह प्रयक्षामि, वह सब मैं तुमसे कहूंगा। तेसवें श्लोक में बताते हैं,
षडानुपूर्व्याम विप्रस्य क्षत्रस्य चतुरो वरान् विटशूद्रयोस्तुतानेव विद्याधर्म्यान्न राक्षसान्।
आनुपूर्व्याम विप्रस्य षट, गिनाए हुए क्रम से ब्राह्मण के लिए छह ब्राह्म्य दैव आर्ष प्राजापत्य आसुर गांधर्व विवाह धर्मानुकूल है। अनवरान चतुरः क्षत्रियस्य, अंतिम चार जो विवाह हैं असुर गांधर्व राक्षस और पैचात, ये क्षत्रिय के लिए। अराक्षसान तान एव धर्म्यान विधात, वैश्य और शूद्र के लिए राक्षस विवाह को छोड़कर शेष अंतिम तीन आसुर गंधर्व पिशाच को धर्मानुकूल विवाह समझे। 24वें श्लोक में भगवान कहते हैं,
चतुरो ब्राह्मणर्यादा प्रशस्तान कवयो विदुः राक्षसं क्षत्रियस्यैकं आसुरं वैश्य शूद्रयो।
कवयः विचारशील विद्वान, आद्यान चतुरः प्रारंभ के चार विवाहों ब्राह्म्य आर्ष दैव प्राजापत्य को ब्राह्मणस्य ब्राह्मण के लिए प्रशस्तान विदुः श्रेष्ठ मानते हैं, क्षत्रियस्य राक्षसम क्षत्रिय के लिए राक्षस विवाह, वैश्य शूद्रयोः एकम आसुरम और वैश्य शूद्र के लिए आसुर विवाह को ही श्रेष्ठ मानते।
पंचानां तु त्रयो धर्मा द्वावधर्मौ विताश्भिः पिशाचश्चासुरश्चैव न कर्तव्यौ कदाचन।
25वें श्लोक में भगवान कहते हैं, यह पंचानां तु त्रयः धर्म्याः, इस लोक में या व्यवहार में अंतिम पांच व्यवहारों के बारे में तीन विवाह श्रेष्ठ हैं। प्राजापत्य गांधर्व राक्षस तथा दो अधर्म्यौ स्रतौ शेष दो आसुर और पैशाच विवाह अधर्मानुकूल हैं। पैशाचः च आसुरः, पैशाच और आसुर विवाह कदाचन न कर्तव्यो, कभी नहीं करना चाहिए।
पृथक पृथक वा मिश्रौ वा विवाहौ पूर्वचोदिता गांधर्वौ राक्षसश्चैव धर्म्यौ क्षत्रस्य तौ स्मृतौ।
पूर्वच उदितौ गंधर्वाच राक्षसा विवाहौ, कहे हुए पहले गंधर्व राक्षस विवाह पृथक पृथक वा अलग अलग रूप में वा मिश्रौ अथवा मिश्र, जब दोनों लक्षण एक ही साथ मिलते हों तब भी, तौ वे दोनों क्षत्रस्य धर्मौ स्मृतौ, क्षत्रिय के लिए धर्मानुकूल मानते हैं। विद्वानों को यहां पर भी अनेक प्रकार की शंका उत्पन्न होती है। इस पर विचार करते हुए विद्वान कहते हैं कि 22वें श्लोक से 26 श्लोक तक प्रक्षिप्त माना गया है, क्योंकि पहला कारण तो इसका प्रसंग विरुद्ध होना। यहां पर 8 विवाहों के बारे में गिनाया जा रहा था, नामों का उल्लेख करने के पश्चात स्पष्ट है कि उनके लक्षणों का वर्णन करना अपेक्षित और संगत है, जो 27वें श्लोक में प्रारंभ है। किंतु इस क्रम को तोड़कर बीच में इन श्लोकों को, किस वर्ण को कौन सा विवाह करना उचित है कौन सा अनुचित या अप्रासंगिक वर्णन कर दिया है, अतः स्पष्टतः प्रसंग विरुद्ध होने से प्रक्षिप्त है। दूसरा कारण विद्वान इसका अंतर विरोध बताते हैं, क्योंकि 20वें श्लोक में इस प्रसंग को प्राप्त करते समय मनु ने जिन शब्दों का उल्लेख किया है, चतुर्णाम अपि वर्णानाम प्रेत्यचेह हिताहितान, उनसे दो बातें स्पष्ट होती हैं। एक तो यह कि किए विवाह चारों वर्णों के लिए समान रूप से पालनीय है, दूसरी यह हिताहितान कहकर मनु ने इन्हीं विधियों में ही श्रेष्ठता और अश्रेष्ठता मानते हैं। इसकी पुष्टि 39वें श्लोक से 42वें श्लोक तक प्रबल प्रमाण के साथ प्रस्तुत किए जा सकते हैं। उसमें स्पष्टता भी वर्णों के लिए प्रथम 4 विवाहों को प्रशंसनीय माना गया है और अंतिम 4 को निंदित। इस श्लोक में पृथक पृथक वर्णों के लिए पृथक पृथक विवाह निश्चित करना आसुर गंधर्व आदि विवाहों को भी क्षत्रिय वैश्यों के लिए श्रेष्ठ धर्मानुसार मानना उक्त व्यवस्था के विरुद्ध है। इस आधार पर ये श्लोक प्रक्षिप्त हैं। तीसरा कारण विद्वान बताते हुए कहते हैं इसमें अवांतर विरोध भी है, क्योंकि 23वें श्लोक में ब्राह्मण को आरंभ से 6, क्षत्रिय वैश्य को शूद्र को राक्षस विवाह को छोड़कर पिछले 4 विवाह अच्छे कहे गए, जबकि अगले इस 24वें श्लोक में भिन्न रूप से ब्राह्मण को 4 अच्छे, क्षत्रिय को राक्षस विवाह अच्छा और वैश्य शूद्र को आसुर विवाह अच्छा बताया गया। 25वें श्लोक में इन श्लोकों से भिन्न ही विधान है, 26वें में एक अलग ही मान्यता है। इस विरोध के आधार पर यह प्रसंग प्रक्षिप्त है। ज्ञात होता है कि ये श्लोक भिन्न भिन्न व्यक्तियों ने एक दूसरे के खंडन के लिए भिन्न भिन्न समय में प्रक्षेप किए हैं। सत्ताईसवें श्लोक के बारे में भगवान कहते हैं,
आक्षाद्यचार चयित्वाच श्रुतिशीलवते स्वयं आहूय दानम कन्याया ब्राह्मो धर्मः प्रकीर्तितः।
इस श्लोक में भगवान मनु ने ब्राह्म्य अर्थात स्वयंवर विवाह का लक्षण बताया है। श्रुतिशील वर्ते अर्चयित्वा, कन्या के योग्य सुशील विद्वान को बुलाकर आहूय सत्कार करके आक्षाद्य कन्या को वस्त्र इत्यादि से अलंकृत करके कन्यायाः दानम ब्रह्मा धर्मा प्रकृतिता, उसको कन्या का देना वह ब्राह्म विवाह कहता है। इस पर विचार करते हुए ब्राह्म विवाह का लक्षण एवं विवेचन करने पर विद्वान एवं श्रेष्ठ गुण कर्म के स्वभाव के वर को जिस कन्या ने स्वयं वरण की कर प्रसन्न किया है, आदर पूर्वक बुलाकर वस्त्र आदि से अलंकृत कर दोनों के आदर सत्कार पूर्वक कन्या प्रदान करना ब्राह्म विवाह है। इस विवाह में कोई लेन देन नहीं होता, स्वयं आहूय पदों से यह व्यंजित होता है कि कन्या द्वारा वर का चुनाव किया जाता है। सामान्यतः इसमें माता पिता की सहमति होती है, किंतु स्वयंवर में यह अनिवार्य नहीं है। इसमें कन्या की इच्छा की प्रमुखता होती है। यह विवाहों में सबसे उत्तम विधि है। वेदों में पारंगत विद्वानों द्वारा अनुमोदित सम्मत या उसके आचरणानुरूप होने से इसका नाम ब्राह्मी विवाह है। दूसरे अनुशीलन में हम देखते हैं ब्राह्म विवाह ही स्वयंवर विवाह होता है, क्योंकि कन्या के द्वारा स्वयं पसंद और प्रसन्न करके विवाहार्थ बुलाने के कारण ब्राह्म विवाह ही स्वयंवर विवाह है। प्राचीन साहित्य में स्वयंवर प्रथा थी और इसे सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया है। विवाहों में यही सर्वश्रेष्ठ है। मनु ने कन्या को इसी स्वयंवर विवाह को करने का निर्देश दिया। विंदेत सदसंपतिम, अर्थात अपने सदस पति का वर्ण करे। अट्ठाईसवें श्लोक में भगवान देव विवाह का लक्षण बताते हैं। यज्ञे तु वितते सम्यक् ऋजित्वे कर्म कुर्वते अलंकृत्य सुदादानम् दैवं धर्मं प्रचक्षते। वितते तु यज्ञे, विस्तृत यज्ञ में सम्यक् ऋजित्वे कर्म कुर्वते, बड़े बड़े विद्वानों का वर्ण कर उसमें कर्म करने वाले विद्वान को अलंकृत्य सुतादानम दैवम धर्मम प्रचक्षते। वस्त्र आभूषण आदि से कन्या को सुशोभित करके देना ही दैव विवाह है। दैव विवाह का लक्षण स्पष्ट करने पर ज्ञात होता है कि विवाह के उद्देश्य आयोजित यज्ञ में विवाह के उद्देश्य सम्मिलित होकर यज्ञीय क्रियाओं को संपन्न करने वाले विद्वान व्यक्तियों का वर्ण कर या पूर्व वर्ण किए हुए विद्वान को बुलाकर यज्ञ कर्म संपादित करते हुए उस विद्वान को धर्म के अनुसार वस्त्र आभूषणों आदि से अलंकृत करके कन्या प्रदान करना दैव विवाह है। अब यहां पर एक प्रश्न उठता, देव किसे कहते हैं? तो देव सात्विक प्रवृत्ति के विद्वानों को कहते हैं और अग्निहोत्र को भी देव यज्ञ के नाम से अभिव्यक्त किया जाता है। यज्ञ का विशेष अनुष्ठान और उसमें यज्ञ कर्म करने वाले विद्वान को कन्यादान करना, ये दोनों बातें दैव इस संज्ञा के अनुरूप ही हैं। यह विधि देव विद्वानों के कर्मानुरूप और सम्मत है, अतः इसका नाम दैव विवाह है। यहां पर ऋत्विक का क्या अर्थ उठता है, इस पर विचार करते हुए विद्वान कहते हैं कि ऋत्विक शब्द यज्ञ करने वाले ब्राह्मण विद्वान के लिए अधिक प्रसिद्ध होता है, किंतु यहां प्रसंग विशेष से शब्द का विशेष अर्थ है। निरुक्ति में ऋत्व की एक व्युत्पत्ति कही गई है।
ऋतुयाजो भवतीति वा ऋतौ काल विशेषे अवसर विशेषे याजौ यजनशीला याजनशीलो वा। ऋतु शब्द के लिए काल विशेष और उद्देश्य विशेष अर्थ भी है। अवसर विशेष या उद्देश्य विशेष के लिए यजन करने वाला भी ऋत्विक कहलाता है। इस प्रकार विवाह के प्रसंग में ऋत्विक शब्द का अर्थ हुआ विवाह के उद्देश्य से आयोजित यज्ञ में विवाह के उद्देश्य से यजन करने वाला अर्थात यज्ञीय क्रियाओं को संपादित करने वाला विद्वान द्विज जिसका विवाहार्थ वरण किया जाता है वह ऋत्विक कहलाता है। विवाह यज्ञ में वर ही प्रमुख रूप से यज्ञीय क्रियाओं को संपन्न करता है। प्रायः सभी क्रियाएं वर पर केंद्रित होती हैं। कुछ टीकाओं में ऋत्विक शब्द का प्रसिद्धार्थ यज्ञ करने वाला ब्राह्मण विद्वान ग्रहण करके ऋत्विज को कन्यादान करना दैव विवाह बताया गया है। यह अर्थ मनु के विरुद्ध है क्योंकि यहां पर मनु के विरुद्ध और प्रसंगानुकूल नहीं है। यतो ही पहली बात मनु ने ये सभी विवाह विधियां चारों वर्णों के लिए विहित की हैं। उनमें प्रथम चार सभी के लिए उत्कृष्ट हैं और अंतिम चार सभी के लिए निंद हैं। आठ विवाहों में किसी भी विवाह का किसी वर्ण विशेष के लिए निर्धारण नहीं किया गया अपितु योग्यता और प्रक्रिया अनुसार है। देह विवाह को केवल ऋत्विक कहना मनुसम्मत नहीं है क्योंकि अन्य विवाह विधियां जब सभी वर्णों के लिए हैं तो देव विवाह केवल ऋत्विक व्यक्तियों के लिए वर्णित हो यह बात प्रसंगानुकूल नहीं लग रही। इससे ऋत्विक शब्द के उपर्युक्त अर्थ की पुष्टि होती है। आर्ष विवाह का लक्षण कहते हुए अंतिम 29वें श्लोक में भगवान कहते हैं एकम गो मिथुनम द्वैवा वरादादाय धर्मतः कन्या प्रदानम विधिवरदो दार्शो धर्मः शौक्षते। वरात धर्मतः जो वर से धर्मानुसार एक गो मिथुनम वा द्वे एक गाय बैल का जोड़ा अथवा दो जोड़े आदाय लेकर विधिवत कन्या प्रदानम विधि के अनुसार यज्ञादि पूर्वक कन्या का दान करना स आर्षः धर्म प्रति उच्यते उसे आर्ष विवाह कहते। यहां पर विरुद्ध देखने को मिलता है। स्वामी दयानंद संस्कार विधि में टिप्पणी करके कहते हैं यह बात मिथ्या है क्योंकि आगे मनुस्मृति में निषेध किया गया है और युक्ति विरुद्ध भी है इसलिए कुछ भी न ले लेकर दोनों की प्रसन्नता से पाणिक ग्रहण होना आर्ष विवाह है। यहां पर आर्ष विवाह के विवाद का विवेचन करते हुए विद्वान कहते हैं आर्ष विवाह में कुछ आचार्यों के मत में वर से एक गौ का जोड़ा लेकर कन्या प्रदान करने का कथन है जैसा कि इस श्लोक में कहा गया है किंतु मनु ने इस विचार का तीव्र शब्दों में खंडन किया। इस श्लोक में गोयुगल का विधान होने और तीसरे अध्याय के 53वें में उसका निषेध होने से व्याख्याकारों ने यह जिज्ञासा और आपत्ति प्रकट की है कि फिर आर्ष विवाह का लक्षण क्या है। तो इस श्लोक में धर्मतः पद पठित है जिसका अभिप्राय है कि विवाह में दान देने के धर्म का पालन करने के लिए गोयुगल को ले लेना चाहिए लालचवश नहीं क्योंकि अग्रिम श्लोकों में मनु ने लालच व शुल्क लेने का निषेध किया है। धर्मविद को पूरा करने के लिए विहित वस्तु का लेना देना नहीं चाहिए। स्पष्ट शब्दों में इस मत का खंडन करते हुए यह भी कहा गया है, आर्षे गोमिथुनम शुल्कम केचिदाहु मृषैवतम। मनु कहना चाहते हैं कि थोड़ा या बहुत कैसा भी लेन देन कन्या को बेचने के समान है, अतः कुछ नहीं लेना चाहिए। इस प्रकार यह समाधान संतोषजनक नहीं है। आर्ष विवाह के लक्षण के बारे में विद्वान कहते हैं, इस विधि निषेध में ही इसका लक्षण स्पष्ट हो गया है, अतः उसको पृथक से कहने की आवश्यकता नहीं है। परिशेष न्याय से स्पष्ट हुआ कि बिना किसी लेन देन के केवल विवाह करना, पूर्ण सादगी से कन्या प्रदान करना आर्ष विवाह है। इस श्लोक में कन्या के अलंकरण आदि की चर्चा नहीं की गई। इससे यह सिद्ध होता है कि इस विवाह में वस्त्र आभूषण आदि से अलंकृत करने का कथन नहीं है। केवल विवाह संस्कार करके ही वरवधु ऋषित्व के अनुरूप अर्थात त्याग तप गंभीर निष्ठा की भावना से प्रेरित होकर गृहस्थ धारण का निश्चय करते हैं। ऋषिजन सम्मत अनुमोदित और उनके आचरणानुरूप होने से इसका नाम आर्ष पड़ गया। अब यहां पर प्रश्न आता है कि ऋषि कौन है। मंत्र दृष्टा या किसी विद्या के तत्व दृष्टा विशेषज्ञ विद्वान को ऋषि कहा जाता है। तीसवें श्लोक में प्राजापत्य विवाह का लक्षण किया गया है।
सहौ भौ चरताम धर्मम इति वाचानुभाष्य च कन्या प्रदानम अभ्यर्च प्राजापत्यो विधि स्मृतः।
अभ्यर्च, कन्या और वर को यज्ञशाला में विधि करके उभौ धर्म सहचरताम सबके सामने तुम दोनों मिलके गृहस्थाश्रम के कर्मों को यथावत करो, ऐसा वाचा अनुभास्य कहकर कन्या प्रदानम दोनों की प्रसन्नता पूर्वक पाणिग्रहण होना प्राजापत्या विधि स्मृता, वह प्राजापत्य विवाह कहलाता है। यहां पर प्राजापत्य विवाह का लक्षण एवं विवेचन करने पर ज्ञात होता है कि वर वधु को तुम साथ रहकर गृहस्थ धर्म का पालन करो, ऐसा कहकर कन्या को अलंकृत करके विधि पूर्वक प्रदान करना प्राजापत्य विवाह है। इस श्लोक की प्रथम पंक्ति के पदों से यह व्यंजित होता है कि यह विवाह दोनों के माता पिताओं के स्तर पर खोज करके निश्चित किया गया है। इसमें वरवधु की इच्छा गौड़ होती है या माता पिता की इच्छा ही ढली होती है। माता पिता जहां विवाह उपयुक्त समझते हैं उसका निश्चय कर विवाह संपन्न करके उन्हें गृहस्थ पालन की स्वीकृति दे देते हैं। इसमें भी कोई लेन देन नहीं होता। प्रजापति किसे कहते हैं, एक प्रश्न उठा। प्रजापति प्रजा अर्थात संतान के पालन में तत्पर माता पिता आदि गृहस्थ विद्वानों को प्रजापति कहते हैं, जिन्हें पितर भी कहा जाता है। इसमें ब्राह्मणों और निरुक्त के प्रमाण हैं।
प्रजा अपत्यनाम प्रजापति पाता वा पालयिता वा पितरः प्रजापति पुरुषः प्रजापति।
इस प्रकार से प्रजाओं को उत्पन्न करके उनका पालन करने के कारण पुरुष प्रजापति होता है, पितर अर्थात माता पिता आदि प्रजापति होते हैं। संतानों का पालन करने वाले माता पिता आदि गृहस्थ विद्वानों का अनुमोदित सम्मत और उनके धर्मानुचरण रूप होने से उनका नाम प्राजापत्य विवाह है।
आसुर विवाह का लक्षण बताते हुए भगवान मनु कहते हैं,
ज्ञातिभ्यो द्रविणं दत्त्वा कन्यायै चैव शक्तितः कन्या प्रदानं स्वच्छन्द्या आसुरो धर्म उच्यते।
ज्ञातिभ्यः च कन्यायै, वर जाति वालों और कन्या को भक्तितः द्रविणं दत्त्वा यथाशक्ति धन देकर, कन्या प्रदानम होम आदि विधि कर कन्या देना आसुरा धर्म उच्चते, आसुर विवाह कहलाता है। जब विवेचन करते हुए ब्राह्मण कहते, धन के लोभी माता पिता कन्या या लड़के की इच्छाओं की उपेक्षा करके या उन्हें महत्व न देकर परस्पर धन लेकर अपनी इच्छा से जो विवाह करते हैं उन्हें आसुर विवाह कहते हैं। मनु ने इसे निंदनीय और अधर्म बताया। असुर किन कहते हैं, इस पर प्रश्न उठता है। नसुराह असुराह, अर्थात जो देवताओं के समान नहीं है, जो देवताओं के समान निस्वार्थ निर्वैर परहित परोपकार त्याग तप सहिष्णुता आदि भावनाओं से नहीं है, जो अपने देह और प्राणों को ही पोषण करने में अपने ही स्वार्थ सुख सुविधा धन और हित साधन में तत्पर रहते हैं, उनकी पूर्ति के लिए तरह तरह के छल प्रपंच माया जाल इत्यादि रचते हैं, ऐसे व्यक्ति असुर कहलाते हैं। क्योंकि निरुक्ति और ब्राह्मणों में प्रमाण दिया गया है, असुरता स्थान वेश्वस्ता स्थाने भेति वा आसुरिति प्राणानामास्त शरीरे भवति तेन तद्वन्तः। शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है, असुराः स्वे स्वे वास्येषु ज्वरत्वेष्वेतुः माया तेषुराः उपासते। अर्थात असुर माया का की उपासना करते हैं। अशुः क्षेपणे, इस धातु से अशेरुरन उणाद से उरुन प्रत्यय होकर असुर शब्द बना। असुर से संबंध रखने वाला अर्थ में अण प्रत्यय लगाकर आसुर शब्द बनता है। इस प्रकार दूसरे की भावनाओं की उपेक्षा करके धर्म और स्वार्थ में तत्पर व्यक्तियों द्वारा अनुमोदित सम्मत अथवा उनके आचरणानुरूप होने से इसका नाम असुर विवाह है। गांधर्व विवाह का लक्षण करते हुए भगवान कहते हैं,
इच्छयान्योन्य संयोग कन्यायाश्च वरस्य च गांधर्वः सतु विज्ञेयो मैथुन्यः काम संभवः।
वरस्य च कन्याया, वर और कन्या की इच्छया अनोन्य संयोग, इच्छा से दोनों का संयोग करना, मैथुन्य और अपने मन में यह मान लेना कि हम दोनों स्त्री पुरुष हैं, काम संभवः, काम से हुआ, शतु गांधर्वः विज्ञेयः, वह गांधर्व विवाह कहलाता है। लड़का और लड़के दोनों की इच्छा में परस्पर संयोग होकर शारीरिक संबंध स्थापित होना और अपने आप को पति पत्नी के रूप में मानकर विवाह कर लेना, यह गांधर्व विवाह है। यह काम भावना से होता है, मनुष्य को निंदनीय और अधर्मानुकूल बताते हैं। मनु ने यद्यपि धन आदि के लेन देन की बात नहीं की है, किंतु कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार गांधर्व विवाह में पुरुष को कन्या के माता पिता को धन देना चाहिए, ऐसा वर्णित है। गंधर्व किनको कहते हैं? गंधर्व की व्युत्पत्ति है गाम अर्थात वाचम, धरती इति गंधर्वा, वाचम धरती इति गंधर्वा, अर्थात गाने की उत्तम वाणी को जो धारण करने वाला है। संगीत अर्थात गाने बजाने नाचने की कला में प्रवीण लोगों को जो विलासी आमोद प्रमोद से व्यस्त श्रृंगार प्रिय और काम प्रवृत्ति प्रधान है उन्हें गंधर्व कहते हैं। ब्राह्मणों के निम्न प्रमाणों से इस पर प्रकाश डाला गया है। रूपमिति गंधर्वा उपासते, गंधर्व लोग रूप की उपासना करते हैं। योषित कामा वही गंधर्वा, शतपथ ब्राह्मण कहता है। इतरे ब्राह्मण कहता है स्त्री कामा वही गंधर्वाह, जैमिनी उपनिषद कहता है गंधो मे मोदो मे प्रमोदो मे यनमे यश्मासु गंधर्वेशु, ऐसे व्यक्तियों से अनुमोदित सम्मत या उनके आचरणानुरूप होने से इस विवाह का नाम गंधर्व विवाह है। राक्षस विवाह का लक्षण करते हुए भगवान कहते हैं हत्वा चित्वा च भित्वा च क्रोशन्ति रुदतीं ग्रहात् प्रसह्य कन्या हरणम् राक्षसो विधिरुच्यते। हत्वा चित्वा च भित्वा च, हनन छेदन अर्थात कन्या के रोकने वालों का विदारण करते, क्रोशन्तीं रुदतीं ग्रहां प्रसह्य कन्या हरणम्, क्रोशती रोती कांपती भयभीत हुई कन्या का बलात्कार हरण कर के विवाह करना राक्षसः विधि उच्यते, राक्षस विवाह है। राक्षस विवाह का लक्षण करते हुए विद्वान कहते हैं कि कन्या पक्ष वालों को मारपीट लड़ाई झगड़ा आदि करके रोती चिल्लाती कन्या को बलात् उठा ले जाकर उससे विवाह करना राक्षस विवाह है। मनु के अनुसार यह विवाह अत्यंत निंदनीय बताया गया है। यद्यपि मनुस्मृति में इस विवाह से कोई लेन देन का कथन नहीं है, किंतु कौटिल्य के अर्थशास्त्र अनुसार इसमें अन्यायी बलात्कारी को, अपहरणकर्ता को कन्या के बदले कन्या को माता पिता को धन देना पड़ता है। राक्षस की व्युत्पत्ति के बारे में विचार करते हैं विद्वान कहते हैं रक्ष पालने धातु से सर्वधातुभ्यो स्नुन सूत्र से असुन प्रत्यय होकर इदम अर्थ से अण प्रत्यय के योग से राक्षस शब्द सिद्ध होता है। राक्षस की निरुक्ति देते हुए कहा गया है रक्ष रक्षितव्यस्मात् रहिसि क्षणोतीतिवा रात्रौ नक्षत्रेतिवा, अर्थात जिनमें धन संपत्ति प्राण आदि की रक्षा करनी पड़े, जो एकांत अवसर पाकर हानि पहुंचाता हो और जो रात्रि में लूटपाट चोरी व्यभिचार आदि दुष्ट कर्मों में सक्रिय रहते हों, उन्हें राक्षस कहते हैं। इस प्रकार अपने स्वार्थ साधन के लिए दूसरों को हानि पहुंचाने वाले, दूसरों की संतान और पुत्रों को पीड़ित करने वाले अत्याचारी अन्यायी बलात्कारी स्वभाव के मांस मदिरा भोजी तमोगुणी व्यक्ति को राक्षस कहलाते हैं। ऐसे व्यक्तियों के आचरणानुरूप उनसे अनुमोदित या सम्मत होने से इनका नाम राक्षस विवाह पड़ गया। 34वें श्लोक में पैसाच विवाह का लक्षण बताया गया है। सुप्ताम मत्ताम प्रमत्ताम वा रहो यत्रोपगच्छते सपापिष्ठो विवाहानाम पैसाचाष्टमोधवः। सुप्ताम मत्ताम वा प्रमत्ताम, जो सोती पागल हुई या नशा पीकर उन्मत्त हुई कन्या को रहा यत्र उपगक्षति एकांत पाकर दूषित कर देना। स विवाहानाम मधमः पापिष्ठः पैशाचः, यह सब विवाहों में सबसे नीच महानीच दुष्ट अति दुष्ट पैशाच विवाह है। पैशाच विवाह का लक्षण एवं विवेचन। सोती हुई पागल हुई या नशे हुई में उन्मत्त कन्या को एकांत अवसर में पाकर दूषित कर देना और उससे विवाह करना, वह पैशाच विवाह है। वह सब विवाहों में अत्यंत नीच दुष्टता पूर्वक और पाप रूप विवाह है। कौटिल्य के अनुसार उसमें भी विवाह करने वालों को विवाह के बदले कन्या पक्ष को धन देना पड़ता है। पिशाच किनको कहते हैं? पिश अवयवे तुदात गण के धातु से क प्रत्यय होने से पिशम पद बिना। पिश उपपद से आंग उपपूर्वक चम अदने धातु से गह प्रत्यय होकर पैशाच बना। अथवा पिशित पूर्वपते अस धातु से अण इत का लोप सकार को चकार होकर पैशाच बना। ये पिशितम अवयवी भूतम पेशितम वा मांसम रुधिरादिकम आचमंती भक्षयंती ते पिशाचा। प्राणियों का कच्चा मांस रक्त तक खाने वाले हिंसक दुराचारी अनाचारी मलिन संस्कारों वाले अत्यंत तमोगुणी अत्यंत निम्न और घृणित स्वभाव के व्यक्ति पिशाच कहलाते हैं। ऐसे व्यक्तियों के आचरणानुरूप या अनुमोदित सम्मत होने से इस विवाह का नाम पैशाच विवाह पड़ा। द्विजों को कन्यादान की विधि अगले श्लोक में बताई गई है। 35वें श्लोक में अधिरेव द्विजाग्राध्याणाम कन्यादानम विशिष्यते इतरेषां तु वर्णानाम इतरे तरकाम्यया। द्विजाग्रण्याम अधभिहेव, ब्राह्मण वर्ण वालों का जल लेकर संकल्प करने से इतरेषां तु वर्णानाम इतरेतर कन्याया, अन्य वर्णों का परस्पर की इच्छा से कन्यादानम विवाह विशिष्यते होता है, श्रेष्ठ है। अर्थात ब्राह्मण वर्ण वालों का जल लेकर संकल्प करने से अन्य वर्णों का परस्पर की इच्छा से विवाह होता है। विवाह के लाभ गुणों के बारे में 36वें श्लोक में भगवान कहते हैं, यो यैसाम विवाहानाम मनुना कीर्तिनो गुणाः सर्वं श्रुतितं विप्राः सर्वं कीर्तितो मम। एषां विवाहानाम, इन विवाहों में यस्य यः गुणः मनुनः कीर्तितः, जिस विवाहों का जो गुण मनु ने कहा है, विप्रा हे विद्वानों, तम सर्वं मम कीर्तयः श्रुणुत, उन सबको मैं तुमसे कहूंगा। दशपूर्वान् परान् वंशान् आत्मानं चैकविंशकं ब्राह्मी पुत्रः सुकृत्क्रन्मोन् मोचये देनसः पित्रन्। अर्थात सुकृत कृत ब्राह्मी पुत्रः, अच्छे कर्म करने वाला ब्राह्म विवाह के विध से उत्पन्न पुत्र, दश पूर्वान् परान् वंशान् पित्रन्, दश पहले पिता पितामह आदि पूर्वजों को और दस आने वाले पुत्र पौत्र आदि को और एक विंशत कम आत्मानाम 21वें अपने आप को एनसह मोचयेत, पाप से छुड़ाता है। दशपूर्वान् परान् वंशान् आत्मानं चैकविंशकम् ब्राह्मी पुत्रः सुकृत्क्रमान् मोचयेदेनसः पितरन्। 38वें श्लोक में भगवान मनु कहते हैं,
दैवोढाज सुत्सैव सप्त सप्त परावरान आर्षोढाज सुत स्त्री स्त्रीन षट षट कायोजाज सुत
च दैवो ढाज सुत। और दैव विवाह की विधि से विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र सप्त सप्त पर अवरान सात सात पिछली और अगली आने वाली पीढ़ियों को आर्षो ढाजा सुता त्रीन त्रीन। आर्ष विवाह की विधि से विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र पिछली तीन 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 आने वाली पीढ़ियों को कायो ढाजा सुता। प्रजापत्य की विधि से उत्पन्न विवाहित स्त्री से पुत्र षट षट छह पिछली और छह आने वाली पीढ़ियों को पाप से छुड़ाता है। पैंतीसवें से अड़तीसवें श्लोक निम्न आधार पर प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं। पहला तो प्रसंग विरोध। चौतीसवें श्लोक में विवाहों की परिभाषा का प्रसंग पूर्ण हो चुका है। इसके बाद उनके गुण दोषों के विवेचन का प्रसंग अभीष्ट और संगत है, वह 39 और 42 श्लोक में वर्णित है। अतः बीच में 35वें में विवाह विधि का कथन, पुनः पीढ़ियों का पार उतारने का कथन, पुत्रों के गुणों का कथन अप्रासंगिक है। यद्यपि 36-38 श्लोकों में भी विवाहों के गुणों का वर्णन प्रतीत होता है, किंतु यह मौलिक नहीं। इसकी पुष्टि के प्रसंग की दृष्टि से दो बातें कही जा सकती। एक तो यह कि इन श्लोकों में विवाहों के गुणों का वर्णन परोक्ष रूप से है, जबकि पुत्रों के गुणों का वर्णन प्रत्यक्ष है, और फिर अवगुणों का वर्णन है ही नहीं। दूसरी यह कि सभी विवाहों के गुण दोषों को सामूहिक विवेचन से 29वें से 42वें श्लोक में क्रमबद्ध और पूर्ण रूप से किया गया, अतः ये श्लोक मौलिक और प्रासंगिक हैं, 35वें 38वें श्लोक नहीं। इसमें अंतर विरोध भी ज्ञात होता है तथा शैलीगर आधार में भी अतिशयोक्तिपूर्ण दृष्टिगोचर होती है, क्योंकि मनु ने इन शैलियों का प्रयोग नहीं किया। उनतालीसवें श्लोक में प्रथम चार उत्तम विवाहों के बारे में भगवान मनु कहते हैं,
ब्रह्मादिषु प्रजा विवाहेषु चतुस्वे वानुपूर्वशः ब्रह्मवरचस्विनः पुत्रा जायन्ते श्लिष्ट संवता। ब्रह्म आदिषु चतुर्षु विवाहेषु ब्राह्म दैव आर्ष और प्राजापत्य, इन चार विवाहों में पाणिग्रहण किए हुए स्त्री पुरुषों से पुत्राः जायन्ते जो संतान उत्पन्न होते हैं वे ब्रह्मवरचस्विनः शिष्टा संवता वेदाद विद्याओं से तेजस्वी आप्त पुरुषों से के संगत से अत्युत्तम होते हैं। चालीसवें श्लोक में भगवान कहते हैं, रूप सत्व गुणोपेता वन धनवंतो यशस्विनः पर्याप्त भोगा धर्मिष्ठा जीवन्ति शशतम समा।
वे पुत्र व कन्या रूप सत्व गुण उपेता सुंदर रूप बल पराक्रम शुद्ध बुद्धि आदि उत्तम गुणयुक्त धनवंता बहुधन युक्त यशस्विना पाप कीर्ति पुण्य कीर्तिमान च पर्याप्ति भोगा और पूर्ण भोगों के भोक्ता धर्मिष्ठा धर्मात्मा होकर शतम समाह जीवंती, 100 वर्ष तक जीते हैं। अंतिम 4 विवाहों की निंदा करते हुए 41वें श्लोक में भगवान कहते हैं, इतरेषु तु श्रेष्ठेषु न संसानतवादिनः जायन्ते दुर्विवाहेषु ब्रह्मधर्म द्विषः सुता। इतरेषु तु श्रेष्ठेषु दुर्विवाहेषु, 4 विवाहों में जो बाकी रहे, 4 आसुर गंधर्व राक्षस पैशाच, इन 4 दुष्ट विवाहों से उत्पन्न हुए सुताह संतानः नशंसाह अनर्थवादिना निंदित कर्मकर्ता मिथ्यावादी ब्रह्म धर्मद्विषः वेद धर्म के द्वेषी बड़े नीच स्वभाव वाले जायन्ते होते हैं। श्रेष्ठ विवाहों में श्रेष्ठ संतान बुरी से बुरी होती, ऐसा बताते हुए 42वें श्लोक में भगवान कहते हैं, अनिंदितै स्त्री विवाहै रनद्या प्रजा भवति प्रजा निंदितैर निंदिता नराम तस्मान् निंदान् विवर्जयेत्। अनिंदितै स्त्री विवाहैर अनिंद्या भवति प्रजा निंदितैर निंदिनाम नराम तस्मिन् निंदान् विवर्जयेत्। अर्थात श्रेष्ठ विवाहों से संतान की श्रेष्ठ गुण वाली होती है, निंदितई ही नाम निंदिता, निंदित विवाहों से मनुष्य की संतानें भी निंदनीय कर्म करने लगती हैं। तस्मात इसलिए निंदान विवर्जयेत, निंदित विवाहों के आचरणों में नहीं लाना चाहिए। इसलिए मनुष्यों के योग्य जो विवाह हैं उन्हें ही करना चाहिए, निंदित जो अंतिम 4 विवाह हैं उन्हें मनुष्य को नहीं करना चाहिए।